आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी हाथरस हादसे की जांच रिपोर्ट। रिपोर्ट में दर्ज है डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ितों के परिवार वालों से की मुलाकात। पीड़ितों को खुले दिल से मुआवजा देने की सरकार से की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अन्नपूर्णा हॉस्पिटल का किया लोकार्पण। कहा, 100 बेड का एक अस्पताल कम से कम 500 लोगों को देता है रोजगार। और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर 15 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी को घटना के 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे, लेकिन राहत और बचाव कार्य जारी रहने के कारण अधिकारियों ने 3 दिन का समय मांगा था। एसआईटी का गठन हादसे के मूल कारण और लापरवाही और अनदेखियों को उजागर करना था। यह एसआईटी रिपोर्ट एडीजी आगरा अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी के नेतृत्व में तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में घटनास्थल पर तैनात एक एक पुलिस तथा अन्य सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, प्रारंभिक सूचना वाले कर्मी, एम्बुलेंस कर्मी, डॉक्टर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, किसान, चश्मदीद, घायल, तहसील और जिला स्तर के अधिकारी, डीएम, एसपी आदि तमाम लोगों के बयान शामिल हैं। एसआईटी के सदस्यों ने प्रशासनिक अधिकारियों, आयोजन से जुड़े लोगों और सेवादारों से बात कर भगदड़ के कारणों का पता लगाया है। हाथरस कांड की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम बहुत जल्द हाथरस जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी। न्यायिक आयोग की पहली बैठक लखनऊ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में आयोग के सदस्य के रूप में नामित रिटायर आईपीएस भावेश कुमार सिंह, आईजी कानून व्यवस्था एलआर कुमार और प्रमुख सचिव संसदीय कार्य मंत्री जेपी सिंह के अलावा अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी मौजूद रहे। आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 2 दिन के भीतर हाथरस जाकर जांच शुरू की जाएगी। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कल हाथरस पहुंचकर भगदड़ में मारे गए पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हादसे से बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुले दिल से मुआवजा देने का अनुरोध किया। इससे पहले 3 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाथरस का दौरा किया था। उन्होंने अस्पताल में पीड़ित और उनके परिवारों से मुलाकात की थी। नीति आयोग की ओर से चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान में प्रदेश के 8 जिलों और 68 विकास खंडों को शामिल किया गया है। 3 महीने तक चलने वाला संपूर्णता अभियान 30 सितंबर को समाप्त होगा। अभियान के तहत कल ललितपुर के आकांक्षी ब्लॉक मड़ावरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान में 6 प्रमुख संकेतकों पर आधारित मानकों को हासिल करने के लिए आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में काम किए जाएंगे। उधर पीलीभीत जिले के आकांक्षी विकासखंड पूरनपुर में नीति आयोग के संपूर्णता अभियान का शुभारम्भ भाजपा विधायक बाबूराम पासवान ने किया। इस अवसर पर विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों से मिलकर काम करने और 3 माह के तय समय में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। देवरिया के आकांक्षी विकासखंड गौरी बाजार में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ कल मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि नीति आयोग की उपाध्यक्ष आयुषी मेहता ने की। इस मौके पर संबंधित 6 इंडिकेटर्स पर 3 माह में शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की शपथ दिलाई गई। चंदौली में जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने कल संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अन्नपूर्णा हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के लिए शिक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उत्तम आरोग्य का केंद्र भी उतना ही महत्वपूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि 100 बेड का अस्पताल कम से कम 500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है।
100 बेडेड हॉस्पिटल कम से कम 500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है और 500 लोगों का ये रोजगार एक मायने रखता है, यानी 500 परिवार एक उस हॉस्पिटल पर निर्भर होकर के अपनी आजीविका का संचालन भी करते हैं, यानी सेवा भी हो गई और स्वावलंबन भी उसके साथ जुड़ गया। इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज के समय में मैं मानता हूं कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी चाहता है कि उसको अच्छी चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की है। 2019 से लाखों लोगों ने इस सुविधा का लाभ लिया है, करोड़ों लोग देश के अंदर आज इस सुविधा से लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल एवं शोध संस्थान में कैंसर मरीजों के लिए लाई गई नई रेडिएशन मशीन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने खुशी जताई कि गोरखपुर में भी कैंसर मरीजों के लिए नई आधुनिक मशीन लाई गई है, जिससे कैंसर के मरीजों को इलाज में काफी मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयंसेवी संस्थाओं ने चिकित्सा क्षेत्र में आगे आने की और इसे लेकर सरकारी सेवाओं पर निर्भरता कम करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बस्ती पहुंचकर मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक से संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस्ती के विकास कानून व्यवस्था के साथ बाढ़ और कांवड़ यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों में सतर्कता बरतने के साथ बांधों की मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया जाए और बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत भी की। नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2024 अगले महीने की 11 तारीख को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने कल परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस परीक्षा को पिछले महीने परीक्षा की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले स्थगित कर दिया गया था। यह निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर लगे आरोपों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। उधर बोर्ड ने आज आयोजित होने वाले फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 2024 के अभ्यर्थियों को सलाह जारी की है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की अफवाहों पर ध्यान न दें, इसे लेकर किसी भी जालसाज के बहकावे में न आएं। यदि कोई भी व्यक्ति या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ बोर्ड कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बीते 3 दिन से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला जारी है। अधिक वर्षा के चलते कई जिलों में जल जमाव की स्थिति बन रही है। बारिश के कारण गोंडा, श्रावस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर में 8वीं तक के स्कूल आज बंद रहे। उधर मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन तक बादलों के बने रहने और रुक रुक कर वर्षा होते रहने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली और रामपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एसआईटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी हाथरस हादसे की जांच रिपोर्ट। रिपोर्ट में दर्ज है डीएम और एसपी समेत करीब 100 लोगों के बयान। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हादसे के पीड़ितों के परिवार वालों से की मुलाकात। पीड़ितों को खुले दिल से मुआवजा देने की सरकार से की अपील। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अन्नपूर्णा हॉस्पिटल का किया लोकार्पण। कहा 100 बेड का एक अस्पताल कम से कम 500 लोगों को देता है रोजगार। और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में रूक रूक कर वर्षा का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के 9 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।